नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 30 वर्ष पुराने सभी पुलपुलियों की जांच की जाएगी। राज्य सरकार ने कहा 15 दिनों में पूरा होगा सर्वेक्षण। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश के विभिन्न भागों में हो रही बारिश के कारण कई नदियां खतरे के निशान के पार। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। प्रदेश में 21,000 से अधिक पदों के लिए सिपाही बहाली परीक्षा 7 से 28 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। और महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर रग्बी राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने रजत पदक प्राप्त किया। अब समाचार विस्तार से। जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा है कि राज्य में 30 वर्ष पुराने सभी पुलपुलियों की जांच की जाएगी। श्री प्रसाद ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जांच का काम 15 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले दिनों कई पुलों के धंसने की घटना को विभाग ने गंभीरता से लिया है और जांच में दोषी पाए गए अभियंताओं और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलों के ध्वस्त होने की घटनाओं की जांच विभाग का उड़न दस्ता संगठन कर रहा है। इस संगठन के आज अपनी रिपोर्ट सौंपने की संभावना है। श्री प्रसाद ने बताया कि छाड़ी नदी पर बनाए गए 6 पुलों के ध्वस्त होने में ठेकेदारों ने गाद की उड़ाही में पुलों के पाए और बुनियादी संरचना का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने कहा कि छाड़ी नदी पर नए पुल पुलिया के निर्माण के लिए एक सप्ताह के भीतर कार्य योजना तैयार कर ली जाएगी।
छाड़ी नदी पर आवागमन सुनिश्चित करने हेतु नए पुलों के निर्माण कार्य की स्वीकृति युद्ध स्तर पर एक सप्ताह के अंदर प्रदान किया जाएगा। इन पुलों के निर्माण पर होने वाले व्यय की वसूली संवेदक से ही की जाएगी और उसी के माध्यम से ये पुलों का निर्माण किया जाएगा। यानी अभियंता जो दोषी पाए जाते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और संवेदक से वसूली कर इन पुल जो पुल टूटे हैं उनका निर्माण भी किया जाएगा।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश को बाढ़ से बचाव के लिए भारत नेपाल सीमा पर बांध निर्माण के लिए केंद्र सरकार की टीम अध्ययन कर रही है। उन्होंने समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का तेज गति से विकास हो रहा है।
अभी केंद्र की सरकार डैम जो बाढ़ की समस्या है तो नेपाल और भारत के बॉर्डर पर जो बनने वाला है केंद्र सरकार ने उसको अध्ययन कर रही है और निश्चित रूप से बिहार बाढ़ की समस्या से न झूले इसके लिए भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी प्रयत्नशील है।
नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के चलते राज्य से होकर गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से 28 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बालतारा में लाल निशान से 34 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। नदी का जलस्तर सुपौल के बसुआ में खतरे के निशान के आसपास पहुंच गया है। इधर महानंदा नदी का जलस्तर पूर्णिया के ढेंगरा घाट में लाल निशान से ऊपर दर्ज किया गया। कटिहार के झाबा में नदी का जलस्तर चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। परमान नदी अररिया में लाल निशान से 17 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोसी नदी के जलस्तर में कमी आने के बावजूद नदी का दबाव कई तटबंधों पर बना हुआ है। नदी का पानी किशनपुर प्रखंड के मौजहा पंचायत के निचले इलाकों में फैल गया है। कई लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इधर कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि महानंदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से अहमदाबाद प्रखंड सबसे अधिक प्रभावित है। जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने बताया कि कटाव क्षेत्र में बाढ़ निरोधात्मक कार्य के जरिए कटाव रोकने की कोशिश की जा रही है। दरभंगा जिले में कमला बलान नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के गौड़ा बौराम प्रखंड क्षेत्र में कमला बलान नदी का पानी चतरा, रहीटोल, बौराम मुसहरी और मनसारा समेत कई गांवों में फैल गया है। सड़कों पर पानी आ जाने के चलते लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। किसानों की मूंग और धान की फसल पूरी तरह से पानी में डूब गई है। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
जिले के चौथम और बेलदौर प्रखंड के कई गांवों में कोसी और बागमती नदी के उफान से कटाव जारी है। चौथम प्रखंड के दियारा क्षेत्र अंतर्गत सरसवा पंचायत के सिसवा छुट्टी मोहनपुर पंचायत के अग्रहण गांव में भीषण कटाव हो रहा है। सिसवा गांव में कई बीघा उपजाऊ जमीन नदी के गर्भ में समा गई है। नदी की मुख्य धारा आबादी तक पहुँचने लगी है, जिस कारण लोगों में डर का माहौल है। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन।
इधर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में भी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्से में अधिकांश स्थानों जबकि दक्षिणी हिस्से में कई स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। हिमालय की तलहटी वाले जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने आज सिवान, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और सुपौल जिले में एक दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान इन स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान वैशाली जिले के लालगंज में सबसे अधिक 95.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं नालंदा के रहुई में 87.2 और राजगीर में 75.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में सिपाही बहाली परीक्षा 7 से 28 अगस्त के बीच 6 चरणों में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने कहा है कि यह परीक्षा 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को एक पाली में ली जाएगी। पर्षद ने परीक्षा की तैयारी के संबंध में जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र के बारे में सूचना अलग से पर्षद की वेबसाइट पर दी जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से 21,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की बहाली होगी। परीक्षा के लिए 18 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। गौरतलब है कि सिपाही बहाली परीक्षा अक्टूबर 2023 में आयोजित की गई थी, जिसे प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया था। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में 10 जुलाई को आयोजित होने वाली अग्निवीर बहाली के तहत शारीरिक दक्षता की जांच के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। सेना भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों को एक दिन पहले ही आयोजन स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान अभ्यर्थियों को लेजर प्रिंटर से ही एडमिट कार्ड प्रिंट कराने की सलाह दी गई है, ताकि बार कोड रीडर से जांच करने में परेशानी नहीं हो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से कक्षा 3 और 6 के लिए नई और आकर्षक पाठ्य पुस्तकें लाई जाएंगी। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बताया कि पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का कार्य अंतिम चरण में है और कक्षा 3 और 6 की 9 पाठ्य पुस्तकें पहले से ही उपलब्ध हैं। शेष 8 पुस्तकें बहुत जल्द उपलब्ध होंगी। श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक और तनावमुक्त बनाना और सस्ती कीमत और उच्च गुणवत्ता की पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र ओझा को पत्र सूचना कार्यालय PIB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। श्री ओझा शेफाली शरण का स्थान लेंगे, जिन्हें प्रकाशन विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रदेश में श्रावणी मेला के आयोजन को लेकर तैयारियां जारी हैं। मुख्य सचिव ब्रजेश महरोत्रा की अध्यक्षता में मेले की तैयारियों को लेकर विभिन्न प्रमंडलों के आयुक्त, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इधर राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने विभिन्न स्थानों पर मेलों के आयोजन के लिए 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। विभाग ने कहा है कि जिलों द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग आने पर उसे ही पूरा किया जाएगा। गौरतलब है कि श्रावण के महीने की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है। इस दौरान प्रदेश में बांका, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, बेगूसराय, मधुबनी और जहानाबाद में श्रावणी मेलों का आयोजन किया जाएगा। बिहार के 13 आकांक्षी जिलों और 61 आकांक्षी प्रखंडों समेत प्रदेश भर में संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई है। 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे 6 चिन्हित संकेतकों में संतृप्ति प्राप्त करना है। वैशाली जिले के लालगंज में अभियान की शुरुआत करते हुए नीति आयोग के संयुक्त निदेशक एसएम खान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर आकांक्षी जिलों और प्रखंडों में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में कुछ जिलों का, जो कि बहुत पिछले मुझे इंडिकेटर्स में उनका चयन किया था, लगभग 500 के आसपास डिस्ट्रिक्ट थे, उसको और आगे बढ़ाते हुए लास्ट ईयर, वो 2018 में किया गया था, लास्ट ईयर हमने ब्लॉक तक जाने की सोची और बिहार में लगभग 52 जिलों के 61 ब्लॉक्स हैं जिसमें कि हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कहलाते हैं, उसमें 6 इंडिकेटर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों के सहयोग से और जो जिला प्रशासन है, जिलाधिकारी महोदय हैं और जो यहाँ के अन्य अधिकारी हैं।
महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित सीनियर रग्बी राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने रजत पदक प्राप्त किया है। प्रतियोगिता के फाइनल में बिहार की टीम ओडिशा से हारकर उप विजेता बनी है। इधर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आयोजित 8वीं राष्ट्रीय बालक और बालिका जूनियर लगोरी प्रतियोगिता में बिहार ने कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 28 से 30 जून के बीच किया गया था। इस प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने पहली बार पदक जीता है। राष्ट्रीय जनता दल आज अपना 28वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने हिंदी का आधिकारिक इस्तेमाल करने पर बल दिया है। उन्होंने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से प्रकाशित पत्रिका दर्शन का लोकार्पण करते हुए कहा कि इससे राजभाषा को बढ़ावा मिलेगा। गोपालगंज में सीमेंट लदे एक अनियंत्रित ट्रक के कार पर पलट जाने से इसमें सवार महिला दरोगा और चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई। गोपालगंज सदर 2 के एसडीपीओ अभय रंजन ने बताया कि महिला दरोगा सतीभा कुमारी के अदालत जाने के दौरान यह हादसा हुआ। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने मुंबई में T20 विश्व कप जीतकर स्वदेश लौटी भारतीय टीम के स्वागत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, मुंबई में विश्व विजेताओं के स्वागत के लिए उमड़ा जनसैलाब। दैनिक जागरण ने लिखा है, नीट पेपर लीक में सीबीआई के रिमांड पर 5 आरोपित। दैनिक भास्कर लिखता है, एक और पुल गिरा, सरकार ने गलती मानी। प्रभात खबर की सुर्खी है, हेमंत सोरेन बने झारखंड के सीएम, 8 को करेंगे विश्वास मत हासिल। राष्ट्रीय सहारा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का शीर्षक लगाया है, आतंकवाद के हिमायतियों को करें बेनकाब। आज अखबार लिखता है, संविदा पर नियोजित ड्राइवर और परिचारी के पारिश्रमिक तय। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 30 वर्ष पुराने सभी पुल पुलियों की जांच की जाएगी। राज्य सरकार ने कहा, 15 दिनों में पूरा होगा सर्वेक्षण। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश के विभिन्न भागों में हो रही बारिश के कारण कई नदियां खतरे के निशान के पार, निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। प्रदेश में 21,000 से अधिक पदों के लिए सिपाही बहाली परीक्षा 7 से 28 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। और महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर रग्बी राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने रजत पदक प्राप्त किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। Thank you.